नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित चावला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं तलाश इंडिया क्राइम पॉडकास्ट के 11वें एपिसोड में। आजकल इंडिया में, खासकर बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में एक नया सा ट्रेंड चल गया है और वो ट्रेंड है डिटेक्टिव एजेंसीज़ का। यहाँ बहुत सारी डिटेक्टिव एजेंसीज़ खुल रही हैं और लोग आजकल इनकी सेवाएँ भी ले रहे हैं। इन जासूसों का अलग अलग तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं, पर ख़ास तौर पर इन लोगों का यूज़ होता है शादी ब्याह में। मतलब लड़का या लड़की वाले जासूसी करवा के पता करवाना चाहते हैं कि लड़का या लड़की कैसे हैं, उनसे शादी की जा सकती है या नहीं की जा सकती, और ये पता चल सके कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो छुपाई जा रही है, जो बाद में पता चले जिससे शादी के रिश्ते में कोई दिक्कत आए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव्स का यूज़ जिस तरह विदेशों में होता है, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, इंडिया में अभी इनका इस तरह से यूज़ नहीं हो रहा। इन पे लोगों का भरोसा कम है। लोगों के नज़रिए में यही है कि कोई क्राइम होता है तो उसको सॉल्व करने में सिर्फ पुलिस ही सक्षम है, प्राइवेट डिटेक्टिव्स कुछ नहीं कर सकते। ये जासूसों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी इन जासूसों के ऊपर ही है। मतलब एक फैमिली एक क्राइम को सॉल्व करने के लिए पुलिस के पास ना जाते हुए जासूस के पास जाती है और ये प्राइवेट डिटेक्टिव्स उस केस को सॉल्व करते हैं। ये एक मर्डर केस था जिसमें एक फैमिली जासूस की मदद लेती है और इन डिटेक्टिव्स की मदद से मौत के 8 महीने बाद ये राज खुलता है कि वो जो मौत हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, उसकी वजह क्या थी और उस मौत के लिए ज़िम्मेदार कौन था। ये कहानी है 27 मई 2016 की। दिल्ली के पास एक शहर है जिसका नाम है यमुनानगर। ये अच्छा खासा बड़ा शहर है, इसकी आबादी भी अच्छी है। और इस शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था योगेश बत्रा। योगेश बत्रा एक करोड़पति खानदान से थे। इनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई और कॉलेज के दौरान दिल्ली में ही इनकी मुलाकात प्रियंका नाम की एक लड़की से होती है। दोनों में दोस्ती होती है, दोस्ती फिर प्यार में बदलती है। प्रियंका उस टाइम पे उस कॉलेज की मिस कॉलेज भी बनी क्योंकि वो बेहद ही खूबसूरत थी। उसके बाद दिल्ली में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है तो उसमें वो मिस दिल्ली भी चुनी जाती हैं। मिस दिल्ली बन जाने के बाद दोनों का प्यार और बढ़ता है और उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। योगेश बत्रा का प्लाईवुड का काम था, इसके अलावा दूसरे भी बिजनेसेस थे और इनकी गिनती करोड़पति अरबपतियों में आती थी। दोनों की शादी होने के बाद दोनों हंसी खुशी साथ में रहते थे। योगेश बत्रा के माँ बाप इनके साथ ही रहते थे। वक्त बीतता है, इन दोनों की शादी को 18 साल हो गए होते हैं। इस बीच इनके 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और अचानक 27 मई 2016 को प्रियंका चिल्लाते हुए रोते हुए अपने कमरे से बाहर आती है और आस पड़ोस के लोगों को बताती है कि इनके पति को कुछ हो गया है और वो उठ नहीं रहे। उस वक्त योगेश के माता पिता योगेश के साथ नहीं, कहीं और रह रहे होते हैं। लोग भाग के आते हैं, उसके बाद माँ बाप को भी खबर मिलती है, माँ बाप भी आते हैं। आस पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर वो आते हैं, वो आकर देखते हैं और वो कहते हैं कि इनकी मौत हो गई है। प्रियंका से पूछा जाता है कि कैसे क्या हुआ, तो प्रियंका बताती है कि योगेश को हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। योगेश की उम्र उस वक्त 42 साल की थी। तो घर वालों में सब में बड़ा रोना धोना चल रहा होता है, सब उदास होते हैं। प्रियंका भी बड़ी परेशान होती क्योंकि उसके हस्बैंड की मौत हो गई होती है। उसके बाद 27 मई 2016 को उसी दिन योगेश बत्रा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन एक बार ज़रूर थी कि योगेश के माँ बाप को ये विश्वास नहीं होता कि योगेश की मौत हार्ट अटैक से हुई, क्योंकि वो बहुत ही फिट था, हट्टा कट्टा था, कभी उसको कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन हार्ट अटैक है वो 42 साल की उम्र में किसी को भी हो सकता है। लेकिन योगेश के माँ बाप को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस तरह से उनके बेटे की मौत हो सकती है और वो दबी जबान में ये चाहते भी थे कि पोस्टमार्टम हो जाए, लेकिन प्रियंका इसके लिए तैयार नहीं थी। और मौत क्योंकि घर में हुई थी इसलिए कोई लीगैलिटी ये भी नहीं थी कि पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है, और घर वाले तैयार भी नहीं थे। तो इस तरह 27 मई 2016 को उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, घर वाले धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान योगेश की माँ को सपने आ रहे होते हैं और सपने में वो देखती थी कि उनके बेटे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, लेकिन उसके साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन कोई भी योगेश की माँ की बात को कैसे मानता, क्योंकि वो सब लोग उनको कहते थे कि ये सपना ही तो है। फिर एक दिन वो ये बात, सपने वाली बात, अपने पति को बताती है, योगेश के पिता को, जो उस वक्त 70 साल के थे और खुद माँ करीब 65 साल की थी। और योगेश के पिता को पहले ही शक था कि उनके बेटे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। और इधर माँ जिक्र किए जा रही थी अपने सपने को लेके। ये सब के बाद भी दोनों खामोश थे, और इस खामोशी की वजह ये भी थी कि प्रियंका की इन दोनों से बनती नहीं थी, और शादी के कुछ दिनों बाद ही प्रियंका योगेश के साथ, अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहने लगी थी। तो योगेश के पिता ये सारी बातों को इग्नोर करते हैं और चीज़ें वैसे ही चल रही होती हैं, क्योंकि कोई शक की कोई वजह नहीं थी, योगेश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बस एक ही चीज़ थी जो खटकती थी उनके मन में, वो ये कि इसकी हार्ट अटैक से मौत कैसे हो सकती है जबकि वो बिल्कुल हेल्दी आदमी था। इस बात को करीब एक महीना गुजर जाता है और अचानक योगेश के माँ बाप एक चीज़ नोटिस करते हैं, वो ये कि प्रियंका के हाव भाव बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। प्रियंका के चेहरे को देख के, उसके हाव भाव को देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि वो उदास है, उसके हस्बैंड की अभी एक महीना पहले ही मौत हुई है, वो एकदम नॉर्मल हो गई थी। और उसके बाद योगेश की मौत के इमीडिएटली बाद उसने फटाफट बिज़नेस को टेक ओवर कर लिया, उस बिज़नेस की डायरेक्टर बन गई, सब चीज़ें अपने नाम करवा ली। तो ये सब इतनी तेज़ी तेज़ी हुआ, जिसको देखने के बाद माँ बाप को और शक होने लगा। फिर भी दोनों माँ बाप खामोश रहे। फिर इस हादसे के एक महीने बाद एक और चीज़ हुई, वो ये कि प्रियंका ने अपने दोनों बच्चों को देहरादून स्कूल में पढ़ने भेज दिया। अभी तक वो दिल्ली में पढ़ रहे थे, अब पति की मौत हुई, प्रियंका नॉर्मल अपनी ज़िंदगी चला रही है, दूसरी तरफ बच्चों को अपने से दूर देहरादून भेज रही है। तो ये सब देख के दोनों माँ बाप का शक और बढ़ा। तो आखिर योगेश के पिता, जो 70 साल के थे, वो हरियाणा पुलिस के पास, पुलिस थाने पहुँचते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि मेरे बेटे की इस तरह मौत हुई, पर मुझे शक है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई बल्कि उसका कत्ल किया गया। पुलिस रिपोर्ट लिखती है और कहती है कि हम जांच करेंगे, पर ये जांच के नाम पे वो बस टाल रहे थे, क्योंकि पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करते, पोस्टमार्टम हुआ नहीं, जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पर पुलिस चाहती तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकती थी, क्योंकि पुलिस का काम ही ये है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने ये सोचा कि ये माँ बाप इमोशनल हो गए हैं, बच्चे की मौत हो गई है, वो उनसे सहा नहीं जा रहा, और उनको ऐसे ही ख्याल आ रहा है कि बच्चे की मौत नेचुरल कॉज से नहीं, हत्या से, कत्ल कर दिया गया उनका। योगेश की मौत हुए 4 महीने हो गए, ये पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही होती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। तो घर वाले, योगेश के माँ बाप, ये बोझ ले के मरना नहीं चाहते बिना पता किए कि उनके बेटे की मौत हुई कैसे। तो आखिर वो फैसला करते हैं कि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही, तो क्यों ना एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया जाए जो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करे। तो इधर उधर पूछताछ करने के बाद वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को चूज़ करते हैं, उसके पास जाते हैं और उसको पूरी कहानी बताते हैं कि किस किस तरह उनके बेटे की मौत हुई। ये बात सही है कि ये मामला टेढ़ा था, और उसके बाद प्राइवेट डिटेक्टिव के पास इतने पावर्स भी नहीं होते कि पुलिस की तरह वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सके। उसके अलावा एक बात ये भी थी कि योगेश के माँ बाप ये चाहते नहीं थे कि प्रियंका को पता चले कि उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया है जो योगेश की मौत की वजह पता कर सके। प्राइवेट डिटेक्टिव ने अपना काम शुरू किया, उसने शुरू से कॉलेज के टाइम से लेके शादी तक पूरे 18 साल की चीज़ों को जोड़ना शुरू करा, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करे, बच्चों के, योगेश के, प्रियंका के, उसके बाद इनके माँ बाप से भी कुछ जानकारी ली, उसके बाद इन दोनों के दोस्तों की लिस्ट बनाई, उन दोस्तों से किसी न किसी बहाने मिलते थे और जानकारियाँ इकट्ठा करता था ये जासूस। और उसके बाद प्रियंका के पीछे भी जासूस लगाए गए जिससे उसका दिनचर्या पता चले, वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है। और ये करने से प्रियंका के बारे में एक चीज़ पता चली कि वो रोज़ एक जिम जाया करती थी। पर हैरानी की बात यह है कि जिम जाती थी वो तो एक नॉर्मल सी बात है, पर हैरानी की बात ये थी कि अपने पति की मौत के इमीडिएटली बाद वो जिम जाना क्यों शुरू कर दिया। तो ये चीज़ ये डिटेक्टिव को ठीक नहीं लगी और उसने डिसाइड किया कि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना यहीं से शुरू करते हैं। ये जासूस प्रियंका के पीछे लगाता है और वो दोनों के मोबाइल नंबर्स भी निकलवाता है और उन पे भी नज़र रखता। फिर इन जासूसों के थ्रू ये पता चलता है कि वह जिम का जो इंस्ट्रक्टर था, जो ट्रेनर था, उससे प्रियंका की बहुत नज़दीकियाँ थी। ये सब इन्वेस्टिगेशन तो चलती रही क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि अगर प्रियंका रोज़ एक जिम में जाती है तो वहाँ के इंस्ट्रक्टर से जान पहचान नज़दीकी हो ही जाती है। फिर एक दिन हैरानी की बात यह है, जो अजीब चीज़ थी, कि ये ट्रेनर एक दिन प्रियंका के घर में देखा जाता है। एक जिम का ट्रेनर वो अपने क्लाइंट के घर पे आता है। वो चीज़ ने ये डिटेक्टिव के कान खड़े कर दिए। उसके बाद डिटेक्टिव अपने सोर्सेस को लगाता है, जिम के ट्रेनर के जान पहचान के लोगों से मुलाकात करता है और उसके बाद इन दोनों की कुछ फ़ोटोग्राफ्स को हासिल करता है। और ये जो फ़ोटोग्राफ्स डिटेक्टिव को मिलती हैं, वो फ़ोटोग्राफ्स बड़ी इंटीमेट थी। जिम का इंस्ट्रक्टर जिसका नाम रोहित था और प्रियंका, इन दोनों की बड़ी इंटीमेट फ़ोटोग्राफ्स थी वो। और इन फ़ोटोग्राफ्स को देख के कोई भी ये कह सकता था कि ये दोनों के बीच में प्यार है और दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ये तस्वीरें बता तो रही थी कि दोनों में, रोहित और प्रियंका के बीच में कोई रिलेशनशिप है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि इन दोनों का हाथ योगेश की मौत में भी है। तो ये डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन बढ़ाना शुरू करता है। ये डिटेक्टिव का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो अपने सोर्सेस के ज़रिए ये पता लगाता है कि 26 और 27 तारीख को रोहित और प्रियंका की लोकेशन क्या थी। तो ये जब लोकेशन रिपोर्ट आती है तो ये पता चलता है कि 26-27 की रात करीब 11 और 2 बजे के बीच दोनों की लोकेशन, रोहित और प्रियंका की लोकेशन एक ही थी, जिससे ये बात साबित हो गई कि जहाँ कहीं भी ये दोनों थे उस वक्त साथ ही थे और ये लोकेशन थी प्रियंका का घर और योगेश की मौत उसी घर में हुई थी और योगेश की मौत उसी रात हुई थी। तो अब पुख्ता सबूत हाथ में थे। पहली बात, वो तस्वीरों से ये जाहिर हो गया था कि दोनों के रिश्ते थे। दूसरा, जिस रात योगेश की मौत हुई उस रात रोहित उसी घर में था। बस एक चीज़ बची थी कि इसके पीछे मोटिव क्या था, और मोटिव जानने के लिए या तो प्रियंका को बुला के पूछताछ करनी पड़ेगी या रोहित को उठाकर पूछताछ करनी पड़ेगी, और ये राइट या ये पावर प्राइवेट डिटेक्टिव्स को नहीं होता है। उसके बाद ये डिटेक्टिव ने ये सारे सबूत, फोटोग्राफ्स, मोबाइल की लोकेशंस की रिपोर्ट, सारे के सारे योगेश के फादर को हैंडओवर किए। और उस डिटेक्टिव ने योगेश के पिता को यह भी बोला, ये सब काफ़ी है इन दोनों को उठा के इनसे पूछताछ करने को, और पुलिस अपने अंदाज में जब ये पूछताछ करेगी तो ये सारी की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके योगेश के पिता शहर के बड़े पुलिस अफसर के पास जाते हैं। उसी थाने में वापस नहीं जाते जहाँ पर इन्होंने इनिशियली रिपोर्ट लिखाई थी, और ये पुरानी रिपोर्ट जो पहले लिखवाई थी पुलिस थाने में वो भी साथ में लेके जाते हैं। और ये महीना हो जाता है जनवरी 2017। मई 2016 में मौत हुई थी, 4 महीने तक कुछ हुआ नहीं। उसके बाद इन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया जिसने 4 महीने तक इस पर इन्वेस्टिगेशन की। अब हो गया जनवरी 2017, मतलब योगेश की मौत से अब तक हो गए थे 8 महीने। तो वो पुलिस अफसर, जो बड़े पुलिस अफसर के पास जाते हैं, उनको पूरी कहानी बताते हैं कि उनको शुरू से ये शक था कि उनके बेटे की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी, उनका मर्डर किया गया, लेकिन पुलिस ने काम अपना ठीक से नहीं किया। मेरे कहने पे भी उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। उसके बाद हमने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस और जाँचें ये आपके सामने है। तो ये पुलिस ऑफिसर योगेश के पिता से वादा करता है कि ये इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगी और सच्चाई सामने लाई जाएगी। उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लोगों से पूछताछ, जिम के कोवर्कर्स से पूछताछ। उससे बात सामने आती है कि दोनों, प्रियंका और रोहित के बीच में रिश्ता था, बहुत नज़दीकियाँ थी, और योगेश की मौत के बाद ये दोनों साथ में खुलेआम घूमने लगे थे। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस में जब बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह देखी गई तो उससे एक चीज़ और सामने आई कि कुछ वक्त पहले ही प्रियंका ने बहुत ही महंगी गाड़ी, करीब 36 लाख की गाड़ी फॉर्च्यूनर, वो रोहित को गिफ्ट की थी। उसके बाद ये सब चीज़ें देखने के बाद पुलिस फैसला करती है कि रोहित को उठाकर उससे पूछताछ करेंगे। पुलिस रोहित को पकड़ कर लाती है, उससे अपने अंदाज में पूछताछ शुरू करती है। उनको पुलिस रोहित को सबूत दिखाती है, फोटोग्राफ्स दिखाती है, तो शुरू में रोहित मानता नहीं है। और जब रोहित से उसकी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है, उस रात को वो कहाँ था, उसके बारे में वो झूठ बोलता है। उसके बाद जब पुलिस उस लोकेशन की रिपोर्ट रोहित के सामने रखती है और अपना दबाव बढ़ाती है तो रोहित टूट जाता है और वो जुर्म कबूल कर लेता है, वो कन्फेस कर लेता है। रोहित के कन्फेशन के इमीडिएटली बाद पुलिस प्रियंका के घर आती है, प्रियंका को गिरफ्तार करती है और उसे पुलिस स्टेशन लेके आती है। प्रियंका भी अपने जुर्म को मान लेती है और अब दोनों अपनी कहानी सुनाते हैं और दोनों की कहानी सेम थी। और कहानी ये थी कि शादी के करीब 16-17 साल बाद प्रियंका एक जिम ज्वाइन करती है। जिम में जो इंस्ट्रक्टर होता है रोहित, उसको प्रियंका अपना दिल दे बैठती है और दोनों में प्यार बहुत बढ़ जाता है। और दिक्कत सिर्फ ये थी कि बीच में था योगेश, योगेश था तो दोनों शादी भी नहीं कर पाते। तो फिर प्रियंका ही आइडिया देती है कि योगेश को रास्ते से हटा दिया जाए। रोहित के साथ मिलके ही प्रियंका प्लान बनाती है, यूपी के दो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को ये दोनों हायर करते हैं और उन्हें 10 लाख रुपए की सुपारी देते हैं। और प्लान ये था कि ये दोनों क्रिमिनल आएंगे, रात को योगेश को बेहोशी का इंजेक्शन लगाएंगे, वो जब बेहोश हो जाएगा तब उसका गला घोट के उसको मार देंगे और उसके बाद लाश को ले जाकर यूपी में ही किसी तालाब या नहर में फेंक देंगे ताकि वो लाश कभी मिले ही नहीं। प्लान के मुताबिक उस दिन प्रियंका अपने बच्चों को कहीं भेज देती है और 26-27 की रात को ये दोनों क्रिमिनल्स और रोहित प्रियंका के घर के बाहर पहुंचते हैं। प्रियंका जाके चेक करती है कि योगेश सोया है कि नहीं। जब योगेश को देखती कि वो सो गया है, क्योंकि प्लान ये था कि जब वो सो जाएगा तब योगेश को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाएगा, तो चेक करती है। जब योगेश सो गया होता है तो इशारा करके तीनों को घर के अंदर बुलाती है। जैसे ये तीनों घर के अंदर पहुँचते हैं, योगेश की आँख खुलती है, वो तीन अजनबियों को अपने घर में देख के उठ जाता है और जैसे ही उठता है ये तीनों घबरा जाते हैं। इसके बाद इनके बीच हाथापाई होती है और हाथापाई में वो जो इंजेक्शन था, जिस इंजेक्शन की सुई योगेश को लगानी होती है, वो सुई टूट जाती है। अब क्योंकि सुई टूट गई तो वो इंजेक्शन लगा नहीं सकते थे। और प्रियंका की गवाही के हिसाब से ये कहानी ये है कि जब सुई टूट जाती है तो ये जो भाड़े के क्रिमिनल्स होते हैं ये भी घबरा जाते हैं। तो उसके बाद प्रियंका कहती है कि अब योगेश ने तुम लोगों को देख लिया है, किसी भी तरीके से इसको ख़त्म करो, ये तुम्हें पहचान गया है और इसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। तो ये योगेश की खुद की पत्नी भाड़े के क्रिमिनल्स को कहती है कि मेरे पति को अब मार दो, इन्होंने सब देख लिया है। योगेश अकेला, ये तीन, तो ये योगेश पे हावी हो जाते हैं। उसके बाद योगेश का गला दबाते हैं और ये भी कहा गया है कि योगेश को मारने में प्रियंका भी आगे थी और जो तकिया उसके मुँह पर रखा जाता उसको मारने के लिए, उस तकिए को दबाने में भी प्रियंका शामिल थी। और इस तरह दम घुटने से योगेश की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद ये सोचा जाता है कि ये लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो प्रियंका को ये ख्याल आता है कि जिस तरह से वो पलंग पे पड़ा हुआ था मरने के बाद, वैसे ही कोई आदमी को अगर हार्ट अटैक हो जाए तो वो उसी तरह पड़ा हुआ होता है। तो प्रियंका ये डिसाइड करती है कि इसको बॉडी को कहीं ले जाके ठिकाना नहीं लगाना है, इसके बजाय ये बता दिया जाएगा कि इसकी हार्ट अटैक से मौत हुई और फटाफट इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा पोस्टमार्टम किए बगैर। तो इस तरह प्रियंका फिर रात भर इंतज़ार करती है और सुबह सुबह शोर शराबा करते हुए रोती हुई बाहर आती है कि रात को इनको हार्ट अटैक आया, पसीना पसीना हो गए और इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। फिर पड़ोसी आते हैं, घर वाले आते हैं और इस बीच प्रियंका ने इस तरह का सीन क्रिएट कर दिया होता है जिससे जाहिर हो जाता है कि उसकी मौत, योगेश की मौत हार्ट अटैक से हुई है और ऑलरेडी मर चुके हैं तो उनको हॉस्पिटल ले जाने का कोई मतलब नहीं है और फटाफट अंतिम संस्कार कर दिया जाता है ताकि ये पता ना चल सके कि योगेश की मौत किस वजह से हुई। इसी वजह से योगेश की मौत पे ये 8 महीने तक पर्दा पड़ा रहा कि योगेश की मौत नेचुरल कॉज थी या उसे मारा गया था। अगर ये बूढ़े माँ बाप प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर नहीं करते तो ये राज कभी सामने नहीं आता कि एक पत्नी ने अपने पति की ही 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी और गला घोट कर उसकी हत्या की गई। तो इस कहानी से एक बात तो ये समझ में आती है कि पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ सबूतों पे नहीं, शक के बिना पे भी करनी चाहिए थी। और अगर हरियाणा पुलिस उस वक्त ये इन्वेस्टिगेशन करती, उन बूढ़े माँ बाप की बात को सुनती तो ये केस को सॉल्व होने में 8 महीने नहीं लगते और किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये केस अभी लोअर कोर्ट में है और चल रहा है। प्रियंका ने अपनी बेल की अर्जी लगाई थी जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तलाश इंडिया क्राइम्स पॉडकास्ट के 11वें एपिसोड को सुनने के लिए। नमस्कार।